يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور اس کی رضا وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی نیت کیا ہوتی ہے، اس کا مطلب یہی نیت ہونی چاہیے، کوئی اور نہیں نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کا فضل ملے اور اس کی رضا مندی ملے ہمیں. اللہ کے فضل سے مراد بعض لوگوں نے یہ بھی لیا ہے کہ اگر کوئی کاروبار کرنے کے لیے، کوئی فضل کیا ہوتا ہے، زائد چیز نا، ایکسٹرا، تو اگر کوئی تجارت کے لیے بھی ساتھ کر لیتا ہے جب حج عمرے کے لیے جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فضل بھی ملے اور اس کی رضا بھی ملے، مگر مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تجارت کریں، ہم پیسہ بنائیں، ہم اس سے کچھ کمائی کریں، بلکہ مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر جائیں اور اس کی رضا مندی ہمیں حاصل ہو. تو وہ لوگ ان جن کا یہ ارادہ ہے، وہ اس ارادے سے نکلے ہیں، ان کو بھی مت تنگ کرو. اور اس کی آپ سٹوریز تو سن نہیں سکتے ہوں گے کہ کتنی سٹوریز ان کی ہوتی ہیں کہ کس طرح ان کو تنگ کیا جاتا ہے، کبھی ایئرپورٹس پہ، کبھی کس طرح سے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب حلال ہو جاؤ تم تو شکار کرو. حلال ہو جاؤ تم مطلب کیا کہ جب تم احرام کی حالت سے نکل جاؤ، پہلے پابندی بتا دی گئی نا آپ کو کہ احرام کی حالت میں ہو تو پھر آپ شکار نہیں کر سکتے. اب بتا دیا گیا کہ جب آپ حلال ہو جاؤ، حلال کا مطلب کیا، احرام سے نکل آئیں، تب ہے آپ کو فَاصْطَادُوا، امر ہے یہ، شکار کرو. تو کیا مطلب، ہر ایک بندہ جو احرام سے نکلے اس کو ضروری ہے کہ وہ شکار کیے بغیر نہیں گھر جا سکتا؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ایک اجازت دی گئی ہے، امر نہیں ہے، اجازت ہے. اب یہ ہم نے کیسے جاننا کہ یہ اجازت ہے، سیگا تو امر کا ہی ہے، یہ چینج ہم کیسے کر سکتے ہیں خود ہی؟ یعنی اللہ کا تو حکم ہے فَاصْطَادُوا، شکار کرو، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ نہیں ہم نے یہ اجازت ہے کہ پھر اس کے بعد کر سکتے ہو، حکم نہیں ہے، لازم نہیں ہے. کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیں یہیں پہ تو پھر پتا چلتا ہے نا کہ حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، کہاں پہ حکم کا مطلب اجازت ہے اور کہاں پہ حکم کا مطلب حکم ہی ہے. تو اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک کا صرف ترجمہ پڑھ کے اس کو یہ نہ کہیں کہ ہم بس قرآن ہم نے سمجھ لیا. اس لیے کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں کئی ایسے مقامات آپ کو ملیں گے، آگے بھی سورہ جمعہ میں بھی آئیں گے اور بھی جگہوں پہ، جہاں پہ حکم کا معنی اجازت کا ہے، مگر ہم خود سے نہیں بنا سکتے ان چیزوں کو جب تک کہ ہمیں کوئی اس کی دلیل نہ مل جائے حدیث سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے سمجھا اور سمجھایا، اور بھی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. اب دیکھیں، اب آپ دیکھتے ہی جائیں گے کہ حلال و حرام میں بھی، اب یہاں پہ تو ایک چھوٹی سی لسٹ آپ کو مل گئی، بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں جب، تو ہمیں تب سمجھ آئیں کہ اچھا، مثال کے طور پہ میں نے آپ کو چیر پھاڑ کرنے والے جانور بتائے، یہ بتائے، تو اب کتنی جگہوں پہ انسان کو حدیث کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے کہ اس کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو خود ہی پڑھ پڑھ کے قرآن پاک کے ترجمے سمجھ لینا کہ میں عالمہ بن گئی ہوں، عالم بن گیا ہوں، یہ درست نہیں ہے جب تک کہ آپ کسی سے سیکھے نہیں. نہ یہاں پہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہاں پہ تو سیدھا لکھا ہوا ہے تم حلال ہو جاؤ تو پھر تم شکار کر لو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز نہ آمادہ کرے تم کو، شَنَآنُ قَوْمٍ، دشمنی کسی قوم کی، اَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ انہوں نے روکا تم کو مسجد حرام سے، اَن تَعْتَدُوا، کہ تم زیادتی کرو. اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا، اس سے 2 سال پہلے کی تو بات ہے، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ میں آپ جانتے ہیں کہ وہ صلح کیوں ہوئی تھی، مسلمان تو عمرے کے لیے نکلے تھے اور کیسے ان کو روک دیا گیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. اس وقت کا ملال مسلمانوں کو بہت زیادہ تھا، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جس میں کوئی کسی کو نہیں روکتا تھا، وہاں پہ کوئی پرمٹس نہیں چاہیے ہوتے تھے، کوئی ویزے نہیں چاہیے ہوتے تھے اس جگہ پہ آنے کے لیے، دنیا جہان سے لوگ آتے تھے، کبھی کسی کو منع نہیں کیا جاتا تھا، اور اللہ کے گھر سے کون منع کر سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے مسلمانوں کو وہاں انٹر نہیں ہونے دیا، اور مسلمانوں کو اس بات کا رنج تھا، ہمیں تو چھوڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں انٹر ہونے دیا. तो अब ये जो दिल के अंदर एक रंज है, एक गुस्सा भी है, उस वक्त का अंदर था तो सही। अब क्या था कि हमें पता चलता है कि एक काफला मदीना के पास से गुजरता था। अब देखे ना, हालात बदल गए हमें। आप ये समझ लें, एक वो वक्त था कि मुसलमानों को इजाजत लेनी पड़ रही थी काफरों से कि हमें जाने दो, और अब मक्का फतह हो चुका, अब मुसलमान इन पावर है, डोमिनेंट है, अब किसी ने जाना है तो इनसे इजाजत ले, ये जिसको चाहे रोक भी नहीं, क्योंकि जिसकी हुकूमत है उसके ऊपर है ना सारा। अब मुसलमानों के पास बहुत अच्छा चांस था कि अब वो भी रोकें, वो ही करें जैसा उन्होंने किया था। हाँ, तो इन्होंने भी तो हमारे साथ यही किया था ना। इस चीज को यहां रोका गया, और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, देखो ये ना हो कि किसी कौम की दुश्मनी, किसी कौम की, किस कौम की, यानी इन काफरों की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे आमादा कर दे, प्रोवोक करे तुम्हें, अन सद्दूकुम अनिल मस्जिद हराम, कि उन्होंने रोका था तुमको मस्जिद हराम से, अन तातदू के तुम भी अब ज्यादती करो। यानी अब रिएक्शन में तुम भी अब इसमें के हम जो नाकाम वापस गए थे तो ये भी नाकाम वापस हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया यहाँ पे कि देखो तुम्हारे दिल के अंदर क्यों है ये बात, तुम्हें तो ये तुम्हारे दिल में होनी ही नहीं चाहिए, ये नहीं कहा गया। या ये भी नहीं कहा गया उन्होंने तो कोई ज्यादती की ही नहीं, उन्होंने रोका था तुम्हें, ये रोका था, ये उनकी ज्यादती थी और ये बड़ी बात थी, और दिल में ये ख्याल भी आता है कि हाँ फिर हमें भी, फिर अब मेरी बारी है ना, तो अब मैं भी यही करती हूं। मगर देखें, दिल में ख्याल आने पे इंसान का कंट्रोल नहीं है, रिएक्ट करने में कंट्रोल है। फीलिंग्स को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, इन्होंने बहन हमारे साथ बुरा किया था, मगर अब मैंने रिएक्ट कैसे करना, ये मेरे हाथ में है। याद आ जाती है, जब किसी ने आपके साथ बुरा किया होता है तो कभी जब पलट के एक वक्त में आप फिर ऊपर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे, एक घर में पहले सास ने बहू पर बड़ा जुल्म किया, उसके बाद एक दिन वो भी आता है कि बहू की बारी आ जाती है। अब सास बूढ़ी हो चुकी है, बहू जो है वो ताकतवर है, अब उसकी चलने का वक्त आ गया, और उसके बच्चे बड़े हो गए, उसके हाथ मजबूत हो गए, तो अब वो क्या करती है, एक मिसाल दे रही हूं मसलन। इसी तरह और भी आप बेशुमार मिसालें देख लें। एक दिन आप किसी से कुछ मांगने गए तो उन्होंने आपको बड़ा बेइज्जत कर दिया, फिर कुछ अरसा गुजरा, दिन बदलते देर तो नहीं लगती, एक दिन ऐसा भी आया कि फिर आप पावर में आ गए और उन्हीं लोगों को आपसे कोई काम पड़ गया, अब फिर आप क्या करेंगे, अब वो लोग आपके दरवाजे पे आए, या उनको उसी तरह बेइज्जत करेंगे जैसे उन्होंने आपको किया था। अब याद तो एकदम आती है ना, एकदम टीस सी उठती है कि हाय वो दिन याद है जब इसने मेरे साथ ये किया था। अब अंदर फीलिंग आई, लेकिन रिएक्ट कैसे करना ये समझाया जा रहा है। ये ना हो कि तुम किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे आमादा करते कि इन्होंने भी तो हमारे साथ ये किया था, मैं भी इनके साथ ज्यादती करूं, अगर उन्होंने ज्यादती की थी तो तुमने नहीं करनी। देखें कितनी बड़ी तालीम है जो कुरान हमें दे रहा है, और ये हर मैदान में है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, किसी जगह पे भी कोई भी किसी को ईजा पहुंचाता है, तकलीफ देता है, तो अल्लाह दिन बदल देता है। तकलीफ देने वाले को समझना चाहिए और ये सोचना चाहिए हमेशा कि आज मेरे दिन है, कल को इसके दिन भी आ सकते हैं। आज मुझे लगता है ना ये हेल्पलेस है, कोई यतीम बच्चा है, कोई गरीब बच्ची है, कोई नौकर है आपका, कोई बेवा मिस्कीन लोग हैं, कोई गरीब रिश्तेदार हैं, उनको आज बेइज्जत कर रहे हो ना, कल को कोई पता नहीं है, वो आपसे ऊपर जाके किसी पोजीशन पे बैठ जाए और फिर आपको उनके पास जाना पड़े उस दिन, कोई पता नहीं होता। वो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे से रोक दिया था, एक दिन काबे की कुंजी आपके हाथ में थी, काबे की चाबी आपके हाथ में थी, एक दिन उन्होंने इसी मक्का से आपको निकाला था, हाँ, जा मक्का फतह करके इसके फातेह बन के एंटर हो रहे हैं, चाहते तो उनको वहां से निकाल देते। तो देखिए दिन बदल जाते हैं, आज किसी का जोर है, कल किसी और का जोर है, एक जैसे नहीं रहते। हमेशा ये बात याद रखिएगा जिंदगी, किसी के साथ भी ज्यादती करने से पहले, इस घमंड में आने से पहले कि मैं बड़ी चीज हूं ना, सोच लेना कि हमेशा मैं बड़ी चीज नहीं होंगी। आज टेबल के इस तरफ आप बैठे हैं और वो दूसरी तरफ है, कल हो सकता है इस कुर्सी पे वो बैठा हो और आप दूसरी तरफ बैठे, फिर क्या होगा? तो मुसलमानों को कहा गया नहीं, उन्होंने अगर गलत किया है तो गलत का जवाब गलत नहीं है, टिट फॉर टैट नहीं है, तुमने नहीं ऐसे करना। सुभान अल्लाह, और कितनी जबरदस्त तालीम है। अल्लाह अकबर। हर जिंदगी के हर मैदान में इस बात से आप सीख सकते हैं। ये ना सोचें कि उनको कोई तकलीफ नहीं हुई थी, यहाँ तो वो कोई फरिश्ते ही थे उतरे हुए। जाहिर है दिल के अंदर कितना होता है, हमें जो कोई रोक दे, हम आराम पहन के चल पड़े और हमें कोई रोक दे तो हमें कितना गुस्सा आएगा, कितना गुस्सा आएगा। और कहाँ ये के उनके साथ तो क्या क्या उन्होंने हालतें की, कैसे कैसे नहीं दुश्मनी की। और फिर एक यूनिवर्सल रूल दे दिया गया, यूनिवर्सल, सुन रहे हो ना ईमान वालों, आपके लिए है ये सारी बातें, कोई टिम और जैक और हेनरी के लिए नहीं है, ईमान वालों आपके लिए है। यूनिवर्सल रूल फॉर ऑल टाइम्स, फॉर ऑल जेनरेशंस, एक कायदे को याद रखना, और वो क्या है, वताआवनु अलल बिर्री वत्तक्वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उदवान। ये तो बात अगर आप चाहें तो अपनी कहीं सामने लिख के लगा लें हमेशा के लिए, ये जिंदगी का असूल बनाना है हमने, हमेशा ताउन किस में करना है, ताउन, ताउन क्या होता है, सपोर्ट, हेल्प, कॉपरेशन। देखिए दुनिया में जो भी काम होते हैं ना, वो एक दूसरे के ताउन से ही होते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक खाना ही आपने खाना है तो किसी का ताउन आपको चाहिए, कोई होगा जो उसको उगाएगा, कोई काटेगा, कोई बाजार में लाएगा, कोई बेचेगा, कोई पकाएगा, तो फिर जाके कोई किसी को रोटी मिलेगी। एक अकेला इंसान कहीं पे भी सब चीज नहीं कर सकता, उसको ताउन चाहिए होता है। कोई अपना बिजनेस करता है, अपनी दुकान चलाता है, कोई कोई काम करता है, उसमें भी उसको कोई वर्कर चाहिए होते हैं, कुछ कहीं से खरीद के लाएगा, कहीं जाके बेचेगा। तो इस तरह के कॉपरेशन से दुनिया चलती है ना, तो जब भी कॉपरेशन करनी है तो हमेशा बिर और तकवा में करनी है, इथम और उदवान में नहीं करनी। इथम गुनाह को कहते हैं, यानी जो अल्लाह के हकूक के अंदर इंसान कमी करता है, उदवान है जो ज्यादती लोगों के साथ होती है। कोई भी ऐसे काम कर रहे हो तो उनके अंदर अपना हिस्सा नहीं डालना, उसको सपोर्ट नहीं करना। सपोर्ट किस तरह की सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट तो चलो शायद ना लोग इतना करते हो, लेकिन जब आप वर्बली किसी को सपोर्ट करते हैं या आप किसी को किसी की चीज के अंदर जिसको कहते हैं ना इन्वॉल्व होके उसको सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देती हूँ, मिसाल के तौर पे कोई एक बिदत कर रहा है और वो अपनी बिदत के अंदर लोगों को बुलाना चाहता है, अब ऐसे में अगर लोग ताबुन करेंगे तो ही उसका काम चलेगा ना, अगर वो ताबुन ही ना करें तो उसके घर पे कौन आएगा और वो किसके साथ ये काम को रिवाज देगा, अकेले तो किसी से भी नहीं कोई काम होता। अब ऐसे में लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं चले जाते हैं, फिर वो ऐसे ना हो कि बुरा मान जाए, तो इसलिए चलो। तो आपने किस में ताबुन किया, गलत काम में ताबुन किया ना उसका। इसी तरह लोग आपको किसी ऐसी मजलिस के बुलाते हैं, कोई ऐसी मेहंदियां हैं, कोई ऐसी शादियां हैं जहां पे फोहश चीजें हैं, गलत काम होने हैं, और आपको पता है कि ये इन्होंने क्या करना है और इनके क्या तरीके हैं, और पहले भी आप इनकी शादी भी गए थे, इन्होंने यही किया, तो आप क्या करेंगे, ताउन करेंगे इसमें? आपको पता है अगर हर कोई ताउन करना बंद कर देना गुनाह पे, तो फिर गुनाह खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा उस सोसाइटी से। लेकिन अगर लोग तावन करते रहेंगे गुनाहों में, तो फिर क्या होगा, वो काम पनपेगा और ज्यादा उसके यानी मिच्योर होगा और ग्रो करेगा। तो हमने भी तो अपना हिस्सा डाल दिया ना, जिस वक्त हमने तावुन किया तो हमने अपना एक शेयर जरूर उसमें डाला है, चाहे थोड़ा सा है। ठीक है, आप इसी तरह देखें किसी के चोरी के अंदर, किसी के हराम कमाइयों के अंदर उसके साथ कोई तावुन कर रहे हैं, तो तावुन करने से ज्यादा बढ़ेगी ना चीज। इसलिए हमें अपनी जिंदगी का असूल बनाना है, हमने नहीं तावुन करना बुराई में। अब लोग कहते नहीं जी मेरे दोस्त नाराज हो जाएगी, नहीं फिर वो फलाने का ही हो गया। जब आपने एक असूल बना लिया, मैंने गुनाह के अंदर तावन करना ही नहीं है, ये बढ़ावे चढ़ावे का सबब बनेगा ना उसका। हमने प्रमोट करना है तो नेकी को करना है, अच्छी चीजों को करना है, खैर की बातों को करना है, उसमें तावन जितना मर्जी करें, आगे बढ़ के कामों में हिस्सा लें, उसको मॉरल सपोर्ट दे दें, उसको वैसे आप किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है तो उसमें हिस्सा डाल दें, मगर नेकी में, तकवा में, अल्लाह की फरमाबरदारी के कामों में। तो इससे हमें यहाँ पे एक सोसाइटी का पता चलता है कि सोसाइटी की उठान कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी में लोगों को किस किस्म के ट्रेंड्स रखने चाहिए। कि नेकी के वक्त किसी को ये होगा कि मुझे 10 लोग मिल जाएंगे जो मेरे साथ ताउन करने वाले होंगे, गुनाह में कोई डरेगा फिर कि देखो मैं अगर ये काम करूंगी ना किसी ने भी नहीं मेरा साथ देना, सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो वो जुर्रत करेगा फिर गुनाह करने की, गलत काम करने की, गलत स्टेप उठाने की। लेकिन जिस वक्त हम तावुन करते हैं, हम अपने आप को पेश कर देते हैं कि नहीं जी हम आपके साथ हैं, आप फिक्र ना करें, मैं बढ़ बढ़ के उनके उन कामों के अंदर अपना हिस्सा डालती हूँ, तो उसके बाद क्या होगा, उसको तो और ज्यादा एक जुर्रत मिलेगी, खुल के वो गुनाह का काम करेगा। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है, वो कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, क्यों बोला जाता है, यानी एक के साथ जब एक मिल जाता है ना, तो वो एक नहीं रहता, वो 2 नहीं बनते, वो 11 हो जाते हैं, यानी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जब आप तावुन करने लगते हैं गुनाहों के अंदर, तो लोग और ज्यादा जुर्रत करने लगते हैं उन गुनाहों में, वो बेशर्म हो जाती हैं फिर, उनको कोई हया नहीं रहती ना उनको कोई अपनी इसलाह का सोच रहती। लेकिन हमारे आज नॉर्म्स क्या है, हमारे प्रिंसिपल क्या है जिंदगी का, हम वहां तावुन करते हैं जहां पे हमारा मफाद है, हमें कुछ मिलना है, यहाँ पर कोई बड़े बड़े लोग हैं, अब अगर हम इनके साथ तावन करेंगे ना, तो कल को फिर हमें भी कुछ इनके साथ बैठने का मौका मिल जाएगा, या हमें इनकी नजरों के अंदर हम ऊंचे हो जाएंगे, इनकी नजरों में हम इनके ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो वो जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, एलीट लोग हैं, वो चाहे उल्टे सीधे ही कोई काम कर रहे हो, हमने जरूर अंदर बीच में घुस के करना है, इसलिए सिर्फ करना है ताकि उनकी नजरों में हमारी वैल्यू बन जाए। हमें ये नहीं शर्म आती कि अल्लाह की नजर में हमारी क्या वैल्यू होगी, हम बढ़ बढ़ के फिर उनके काम करते हैं। तो ये असूल तो ये सारी चीजों को कट करने वाला है जो हमने आज प्रिंसिपल्स बनाए हैं। इसी तरह जब हम तावुन करते, जब हम सपोर्ट करते हैं, मसलन कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, या हमारी बरादरियां हैं, हमारे कबीले हैं, हमारे अपने लोग हैं, तो तब भी तावुन बिर और तकवा में ही करें, उनके साथ गुनाहों में ना करने शुरू कर दें। कि चूंकि ये हमारी पार्टी का है, या चूंकि ये हमारी बरादरी का है, अब चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, हमारे सामने है कि ये गलत कर रहा है, लेकिन हमने उसको सपोर्ट करना ही करना है जी, क्योंकि ये हमारा अपना बंदा है, कहते हैं ये हमारा अपना बंदा है, हम तो इसको नहीं सपोर्ट करेंगे तो क्या। और इसमें याद रखिए, काफिर और मुसलमान के भी कोई फर्क नहीं है, काफिर भी अगर कोई नेकी का काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे कोई अस्पताल बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे और कोई ऐसे नेकी के काम कर रहे हैं, उसमें आप तावुन कीजिए, जरूर कीजिए, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। मगर गुनाह का काम चाहे आपका अपना सक्का भाई कर रहा हो ना, उसमें तावुन ना करें। और हमें ऐसे मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावुन किया था उस वक्त, जिस वक्त के काफिरों को भी जरूरत थी, तो आपने उनका तावुन किया, इसलिए कि नेकी का काम था, तकवा का काम था। जब भूख और प्यास उनके ऊपर थी, फाका उनके ऊपर था, तो तावुन किया था आपने, तो इसमें हरज नहीं है जिस वक्त नेकी के काम हो। लेकिन आपको ये नहीं समझ आती कि हम समझते ना तो क्या हो गया, तो क्या हुआ, आपको ये नहीं पता चलता कि देखो जब मैं बुराई के अंदर अपना ताबून डालूंगी तो मैंने अपना वेट डाल दिया, समझ लें उस पलड़े के अंदर मैंने उसको हैवी कर दिया। मेरा भी चाहे थोड़ा सा ही वेट क्यों ना हो, है तो सही, मैं भी एक बंदी हूं, मैं क्यों डालूं अपना वेट, मैं क्यों अपना हेड काउंट दूं यहां पर। कभी सोचते हैं इसको? हर कोई अगर बंदा ये सोचने लगे मेरे से क्या फर्क पड़ेगा, चलो मैं तो कर लेती, मैं तो इनके साथ हो जाती हूँ खड़ी आज, तो आपको ये नहीं समझ आती कि हर बंदा ये सोच के आ रहा है तो हेड काउंट कितना हो गया। वो एक ने भी वही सोचा, दो ने भी, चार ने भी, 10-20 बंदे तो उसने अपने साथ मिला ही लिए ना फिर, क्योंकि आप सब यही सोच रहे थे। तो ये इतनी वसी आयत है ना, ये इतनी वसी ये पोर्शन है आयत का कि ये आपकी हर फेज ऑफ लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ है, आपके ताल्लुकात हैं, आपके कारोबार हैं, आपके किसी साथ मिलना जुलना है, बस हर जगह पे ये बात अप्लाई होती है कि मैंने अपना रूल बनाना है। ताबन वाल बेरी वतकवा वाला ताबन वाल इसमें वाला, नहीं जी मैं नहीं, आपकी माजरत है मेरी तरफ से, इसमें मैं नहीं हिस्सा ले सकती, बाकी आप कोई काम बताएं तो जरूर मैं हाजिर हूं, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये गुनाह का काम है। ये बोलते हुए हमारी जबान ही बंद हो जाती, गिगी बंद जाती है कि हाय कैसे कहूं, नहीं ना बुरा मान लेगी, हमारे ताल्लुकात ना खराब हो जाए, अल्लाह से ताल्लुक खराब होता रहे तो होता रहे, अल्लाह ताला ने तो अपने कुरान में ये फरमाया। हमारे ताबुन आज किधर हो रहे हैं? अगर हमारे तावन हो रहे होते ना नेकी में तो आज ये हाल ना होता जो दुनिया में देख रहे हैं हम। हमारे तावन है ही बुराई में, हम उधर जा जा के बैठते हैं, उन्हीं चीजों को हम सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट की निगाह से देखते हैं, तारीफ करते हैं उन चीजों के ऊपर जो गुनाह की होती हैं, तो वो भी एक तावन ही है। गुनाह उसने किया, आपने ठीक है नहीं किया, आपने अपना तावन तो डाल दिया ना, आपने जो दो डायलॉग बोले उसके जरिए आपने अपनी सपोर्ट दे दी उसको कि वो और ये काम करे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये बहुत, इसके ऊपर तो पूरा एक दर्स हो सकता है, ये तो पूरा एक लेक्चर है इसके ऊपर कि आप ये बात समझें कि कैसे ताबुन होता है बिर और तकवा में, और कैसे नहीं ताबुन करना हमें गुनाहों और ज्यादती के कामों में, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। और जब आप नेकी में ताबुन करेंगे ना फिर देखिएगा नेकी कैसे आगे बढ़ती है, इरिस्पेक्टिव वो कोई भी कर रहा है, वो आपके ओपोनेंट्स हैं, वो आपके कोई दुश्मन है, तो फिर भी कह देंगे ठीक है मुझे इनके ये बातें नहीं पसंद, मगर ये चीज वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये होता है ना फिर हक बात कहना, ये नहीं है कि बस किसी से दुश्मनी है तो उसका सीधा भी हब उल्टा नजर आता है, नहीं उसमें कहें कि ये वाली चीज है इसमें मैं जरूर आपके साथ खड़ी हूँ, ये काम जो फलां कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे हमारे उनके साथ कितने भी इख्तलाफात हों लेकिन ये उनके चीज ठीक है। लेकिन आज आप देखें, और आप ये पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, आप किसी को भी देख ले, कहीं पे भी आप उठा के देखें, हर कोई कहता है नहीं जो हमारा है ना बस वो ठीक है और दूसरा जो है वो सारा ही गलत है। ये तो तरीका कार अल्लाह ने कुरान में भी नहीं किया, जहां पे यहूद की भी सिफत थी वहां पे उनकी सिफत बयान की है, हम कहते हैं मेरा बच्चा है ना तो इसकी हर चीज ही खूबी है, वो थूकता भी है तो वो भी एक सोने की चीज है क्योंकि वो मेरा बच्चा है, तो वो ये बात सही नहीं। ताअवनु अलल बिर्रि व तक्वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उदवान, मेरे बच्चे भी अगर गलती कर रहे हैं तो मैंने उसमें ताबुन नहीं करना, ये नहीं कि वो मेरे बच्चे हैं इसलिए ताबुन ही, मैं माँ हूं मैं और क्या करूं, नहीं कहेंगे को ये गुनाह का काम है, ये अल्लाह की नाफरमानी है। जहां कोई दूसरे के साथ ज्यादती कर रहा है, आप देखती हैं आपकी दोस्त जो है वो अपने हस्बैंड के हकूक नहीं अदा कर रही है, गलत कर रही है, अपने ससुराल में गलतियां कर रही है, बिगाड़ डाल रही है, उसको वहां पे कहें, रोकें उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम है या मजलूम, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ठीक है जालिम के तो मजलूम की तो समझ आती है कि हम उसकी मदद करें, फरमाया मदद करो उसकी, तो जालिम की हम कैसे मदद करें, फरमाया उसको रोक के, उसकी ये भी उसकी मदद है कि आपने उसको रोका, ये आपने तावुन किया नेकी की तरफ और बुराई को रोकने में तावुन किया, समझ आई बात? तो एक नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है बड़ी आंखें खोल देने वाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी जालिम के साथ उसकी मदद करने के लिए चला वो इस्लाम से निकल गया। यानी आप जालिमों के साथ खड़े हो जाएं और उनकी मदद करने खड़े हो जाएं कि जो है ना हम इनके साथ हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं, तो ये ऐसा है कि वो इस्लाम से निकल गया। आज जालिमों के साथ लोग इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जालिम अगर अमीर है तो वी डोंट केयर वो जालिम है। जालिम अगर पावरफुल है, उसकी कुर्सी है, उसकी से है लोगों में, उसके पास कोई बड़े ओहदे हैं, तो जालिम है या जो मर्जी है, हमारी बला से जुल्म करता हो जी अपने घर में, हमें इससे क्या भाई, हम नींद में पड़ते चीजों में, वहां पे हम ये इस पे आ जाते, हर चीज को एक साइड पे डाल देते। हमें पता है कि ये गलत कर रहा है, ये इतना जुल्म कर रहा है, हमें चाहिए कि हम उससे डिस्कनेक्ट करें अपने आप को, हम उसके साथ ही खड़े हो जाते हैं, या हम उसको रोकें, अगर रोक नहीं सकते तो उससे अलग हो जाएं, हम उसके साथ चलते हैं क्योंकि हमने उसकी नजरों में अपने नंबर जो बनाने हैं। फिर आप सल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन आवाज दी जाएगी, कहाँ है जालिम लोग और उनके मददगार, यहां तक कि वो लोग जिन्होंने जालिमों के दवात कलम को दुरुस्त किया वो भी सब एक लोहे के ताबूत में जमा करके जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। यानी इतनी सी भी सपोर्ट, कितनी सपोर्ट होती है ये, एक कलम दवात को सीधा करना कितनी सपोर्ट होगी, क्या सपोर्ट कर ली होगी उसने, इतना सा भी उसको हेल्प देना, इतनी सी भी उसको सपोर्ट करना, इतनी सी भी उसके काम के अंदर उसके साथ ताउन करना कि उसकी कलम दवात को भी सीधा किया ना, जबकि उसको पता था ये जालिम, तो ये भी उसके साथ ही जाएगा वहां। अल्लाह अकबर। तो जराइम में, गलत कामों में, लोगों की बदामालियों में उनके साथी ना बने। हम घरों में आके बहुत प्रचार करते और वैसे इसने बड़ा गलत किया, और पहुंचे हम भी वहीं पे होते, उसके सामने खिलखिला के हंस रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं और तारीफें कर रहे होते हैं, घर आके कहते हैं वैसे बड़ा गलत किया इन्होंने। तो अगर गलत किया तो ये और भी बड़ी बात है कि अल्लाह ने आपको ये सेंस दी थी कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ शामिल होगा और उसके साथ बैठे सिर्फ किस लिए, बात वही बात फिर आ गई ना, अपने नंबर बनाने के लिए। ये भी जालिम के साथ क्यों खड़ा हुआ, ये अपने नंबर बन जाए, मुझे इससे कुछ मिल जाए। हालांकि बाज दफा कोई आपको कुछ दे नहीं रहा होता, और सिर्फ ये होता है कि हम इनकी नजरों में जज जाए, इनके साथ हमारे कॉन्टेक्ट रहे, क्योंकि ये पावर में जो है, हमें पता है ये बदामाल हैं, हमें पता है कि ये गलत काम करते हैं हम, लेकिन उनके साथ साथ होते हैं और वो इस वजह से और स्ट्रांग होते हैं और जुल्म को नहीं छोड़ते, गलत कामों को नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको ताबुन जो मिल रहा। सोचें जा, एक सोसाइटी के अंदर ऐसे लोगों को अगर सब लोग उनसे मुंह मोड़ लें, सब लोग कहें कि नहीं हम नहीं हैं आपके साथ हैं, कौन कर सकेगा गलत काम, कौन कर सकेगा फिर। एक मिसाल के तौर पे एक लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने जहेज लेना है, सब उसके ऊपर थू थू अगर करें, आपने पिछली दफा मैंने आपको वो बात भी हदीस भी बताई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो आदमी आया, उसने अपने हमसाय की शिकायत की, आपने फरमाया तुम अपना सामान बाहर रख दो, लोग आते थे हमसाय पे थू थू करते थे, उसने आके हाथ जोड़े माफिया मांगी, जी आप चलो अपने घर में, लोग मेरे ऊपर लानते मलामते करने लगे हुए, चलो आप अपने घर में, आइंदा नहीं आपको कभी सताऊंगा। तो जब लोगों को पता चलता है ना कि ये तो मेरा साथ छोड़ देंगे, तो फिर वो सब डरते हैं, चाहे वो कोई कितना ही बड़ा क्यों ना आदमी हो, वो भी कहता है कि ये भी मेरे साथ साथ रहे, जब उनको ये लगता है कि ये मेरे से साथ छोड़ जाएंगे तो वो फिर घबरा जाते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा नहीं हमने ये काम करना, हम हमेशा लोगों की नजरों को देखते हैं, तो हर एक इसी तरह देखता है, तो मत ताबुन करें, कम अज कम एक सपोर्ट तो कम मिलेगी ना उसको, कोई एक तो कहने वाला होगा, हम तो ये कहते भी नहीं है कि जी ये गलत काम है, ये बिदत है, ये गुनाह है, ये नहीं करना चाहिए, ये कहने से भी शर्माते हैं और उल्टा साथ ही खड़े हो जाते हैं, जबकि आपको पता है कि हदीस में है कि जो इंसान दूसरों की हिदायत और नेकी की तरफ दावत देता है तो जितने आदमी उसकी दावत पे नेक अमल करेंगे उस सबका अजर इसको मिल जाएगा, और जिसने लोगों को किसी गुमराही में या गुनाह में उसके शामिल हुआ और इस तरह बुलाया, तो जितने लोग उसके बुलाने से गुनाह में मुब्तला हुए उन सबके गुनाहों का बराबर इसको भी गुनाह मिलेगा, इस तरह नहीं है कि उसको कम मिल रहा है। तो अब हम जितने लोगों तक प्रोमोट करते हैं उन चीजों को, उन गुनाहों की प्रमोशन होती है, आगे तक जाते हैं, आप चाहे उनको वर्बली नहीं भी कह रहे हैं कि आओ और ये गुनाह करो, लेकिन जब उन चीजों को प्रोमोट किया जाता है सोसाइटी में और लोग अपना हिस्सा डालते हैं उसके अंदर, वो आगे से आगे वो चीजें फैलती हैं, तो सारे गुनाह में शामिल हो जाते हैं। वो करने वाला तो होता ही है, बाकी भी सारे शामिल। इसी तरह ऐसी जगहों के कारोबारों में जो, अब मिसाल एक देती हूँ, ये तो एक मिसाल है ना, आप बाकी जगहों पे भी देख ले। ऐसा मसला ना, किसी का फिल्मों का कोई कारोबार है, किसी का ऐसी चीजें बेचने का कोई कारोबार है जो गलत है। अब आप जाके वहां से फिल्में ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसके कारोबार को सपोर्ट कर रहे हैं ना, हो रहा है ना उसका कारोबार सपोर्ट। अगर नहीं लेते आप तो आप कहते हैं लो मेरे एक लेने से क्या फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है, आप भी एक इंडिविजुअल है। इसी तरह सारे ही सोचने लगे मेरे से क्या फर्क पड़ता है, तो फिर तो इसीलिए तो फिर चीजें बंद नहीं होती। हमारे यहाँ कितना ये फिल्मों का, ये इन सीडीज गाने और पता नहीं क्या क्या चीजों का कारोबार है, अगर लोग कहने लगे हमने नहीं इसमें ताउन करना, कैसे चलेगा उनका कारोबार, खुद ही वो दुकान बंद करके कुछ और शुरू करेंगे। लेकिन ये आम आवाम के ताउन होते हैं जिसकी वजह से गुनाह बढ़ते हैं सोसाइटी में, और नेकी में ताउन होता है तो तब नेकी बढ़ेगी। तो ये वो चिड़िया की चोंच वाला बात है ना, कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो चिड़िया ने अपनी चोंच में लाके पानी डाला, अब वो किस में ताउन कर रही थी, आग को बुझाने में, उसके एक कतरे से क्या हो जाना था, किसी ने कहा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे कोई आग बुझेगी, तो कहने लगी मेरी तो चोंच इतनी ही है ना, जितना मेरी चोंच में आता है मैं तो उतना ही डालूंगी। उसने अपना काम कर दिया तो आप अपना काम कीजिए। इसी तरह वो बात है कि जो गो है इसने फूंके मारी आग में कि आग और बढ़े, उसके फूंके मारने से तो नहीं बढ़ जानी थी, लेकिन उसको हमेशा के लिए उसको ऐसा जानवर कर दिया कि इसको मारो। तो अपना ताबुन देखिए कि किस तरफ मैं अपना वेट डाल रही हूं जिंदगी में, किन कामों में डालती हूं, और असूल बना लीजिए इसको जिंदगी का, कि नहीं अब चाहे अब मेरे सके ही क्यों ना हो, इसम और उदवान में मैंने नहीं डालना अपना तावन। ठीक है, वत्तकुल्लाह, और हर बात के बाद यही बात है असल में कि अल्लाह से डर जाओ, यानी अल्लाह की नाराजगी से बचने वाली और अल्लाह की रजा वाली जिंदगी इख्तियार करो, ये जिंदगी है एक तकवा वाली। तकवा एक पूरी लाइफ का नाम है, तकवा वाली लाइफ। तो जब तुम ये करोगे ना तो फिर ही तकवा वाली लाइफ होगी। तो वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। हम डरते किस बात से हैं, वो ना नाराज हो जाए, वो ना नाराज हो जाए। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, ये अहकामात ऐसे हैं इनको मामूली ना समझना, अल्लाह ताला बड़ा सख्त है फिर सजा देने वाला भी, कि यानी अगर नहीं मानोगे ना तो याद रखना फिर अल्लाह के पास सजाएं भी हैं। बात समझ आ गई ना, क्योंकि जब किसी चीज का हुक्म दिया जाता है ये आपने नहीं करना और फिर भी कोई कर रहा हो, तो उसके बाद प्यार तो नहीं मिलता उसको, फिर तो सजा का ही इसको डरावा दिया जाता है कि ये याद रखना फिर सजा भी है अगर नहीं करोगे तो। यहाँ पे गफूर रहीम नहीं आया, ये आपने नोट किया, इसलिए क्योंकि जो भी बात आती है ना एंडिंग में वो भी उसके मुताबिक होती है जो बात आयत में कही जा रही है। यहाँ पे वो हलाल और हराम की बातें कही जा रही हैं जिनमें बाज में हो सकता है इंसान कहे कि नहीं जी ये तो नहीं मैं कर सकती, ये तो नहीं मैं मान सकती, तो फिर याद रखना अल्लाह से डर जाओ, वो सजा देने में भी बड़ा सख्त है, फिर और उसने पकड़ लिया तो फिर बच नहीं सकोगे।
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك 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 ونتوب إليك. تلاوة سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب